ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने गायत्री मंत्र के अर्थ के बारे में शुरू किया था। बीच में हमारे काफी सारे फेस्टिवल्स रहे, मदर्स डे, संस्कृति स्कूल का एनुअल डे, मॉन्टेसरी स्कूल के एनुअल डे। पिछली बार हमने थोड़ी सी चर्चा की थी इससे पहले, पर काफी दिन हो गया है, थोड़ी सी पहले की बात को दोबारा रिवाइव करके आगे चलते हैं। हमारे जीवन में, हम हमारी संस्कृति में इस मंत्र का बड़ा महत्व है। हम सभी इसको जानते हैं, बोलते हैं, और कुछ अर्थों को वैसे हमने याद कर रखा है जो आमतौर पर भावार्थ है, तो उसका जो शब्दार्थ है, जो सामान्य अर्थ है, अगर हम अर्थों को समझते हैं तो आसान होता है। वैसे भी कोई भी जप तप पूजा पाठ कुछ भी लाइफ में करें, अगर समझ के साथ साथ करते हैं, मंत्रों के भाव को अगर समझते हैं, तो हमारी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ज्यादा होती है, हम ज्यादा डूब के उसमें कर सकते हैं। और इस मंत्र का महत्व ऋषि मुनि शास्त्रों में, उपनिषदों में, अरण्यकों में, ब्राह्मणों में, धर्मशास्त्र में अनेक प्रकार के बताए गए हैं, हम उस पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। सामान्य अर्थ पर हम चर्चा करेंगे। इस गायत्री मंत्र में तीन भाग है, तीन डिवीजन है, तीन टुकड़े हैं। एक है प्रणव ओमकार, दूसरा है व्याहृति भूर्भुवस्वः, तीसरा है मंत्र का भाग। मंत्र का अर्थ होता है विचार, जो वेदों में विचार प्रकट हुए हैं उसको हम मंत्र कहते हैं। वो शब्द के रूप में बताए गए हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं, पर ये सोचने के लिए, समझने के लिए, मनन करने के लिए विचार होते हैं। तो ये तीन टुकड़ों में बंटा हुआ है ये मंत्र। सारे वेद मंत्र के पहले हम ओम तो लगाते ही लगाते हैं। ओम का अर्थ कम हमने बहुत बार चर्चा की है, थोड़ी सी बता के आगे बढ़ते हैं। संसार में परमात्मा का, जैसे हमारे सबका अपना अपना नाम है, जबकि हमें लोग अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। हमारी माँ बाप हमें और कुछ बुलाते हैं, हमारे भाई, हमारे बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, अंकल, आंटी, प्रोफेशनल लाइफ में अलग अलग बुलाते हैं आप। तो जिस तरह की हमारी एक्टिविटीज होता है, जिस तरह का हमारा रिलेशनशिप होता है व्यक्ति के साथ, तो उसी हिसाब से हमारा नाम बन जाता है। किसके लिए हम पापा हैं, किसके लिए हम भाई हैं, किसके लिए मामा हैं, किसी के लिए अंकल हैं, किसी के लिए आंटी हैं, किसी के लिए सर हैं, मैडम हैं, मिस हैं, किसी के लिए अपना पूरा एक्यूरेट सर्टिफिकेट का नाम है, किसके लिए निक नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग तरीके से जाने जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा दूसरे के साथ कैसा, किस तरह का व्यवहार है। इसी तरह पर हमारा अपना एक निजी नाम है, जो सर्टिफाइड नाम है, जो सर्टिफिकेट में है, जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया है। फर्क इतना है कि हमारा जो नाम है उसके साथ हमारा कोई डायरेक्ट मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं है। वो तो रैंडमली माँ बाप को जो अच्छा लगा नाम दे दिया। अगर पढ़े लिखे माँ बाप है तो अच्छे नाम होते हैं, अनपढ़ माँ बाप हो तो नाम भी उसी तरह का होता है, पर वो व्यक्ति के कैरेक्टर के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। हमारा नाम हो सकता है कि उसका मीनिंग हो धनेश्वर, कि भाई वो बहुत बड़ा पैसे वाला है, हो सकता है मैं गरीब हूं, किसी का नाम गरीब दास है तो पर वो बहुत बड़ा धनी हो, किसी का नाम हो पद्मलोचन, आंखें कमल जैसा है, लाइक लोटस आईज, पर हो सकता है उसकी आंखें ही ना हो। तो हमारे साथ हमारे नाम का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोइंसिडेंटली हो सकता है आपका नाम और आपके कैरेक्टर एक जैसा हो, पर वो कोइंसिडेंट होता है, कोई पक्का नहीं कि जरूर हो। संस्कृत में इसको हम यदृच्छा बोलते हैं, नाम हमेशा यदृच्छा मतलब आदमी रैंडमली अपनी इच्छा से देता है। पर ईश्वर के लिए जो नाम, ईश्वर के भी हजार हजार तरह के नाम है, हर व्यक्ति अपने अपने तरह से उसको नाम देता है। आपके शास्त्रों में पुराणों में लाखों तरह के नाम मिलते हैं, वो नाम वही है जो ईश्वर का किसी ना किसी क्वालिटी को, कुछ ना कुछ उसके एक्टिविटीज को, या इंडिविजुअल जो रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश किए है उसके बेस पर जो भी नाम है। जैसे आप उसको ईश्वर कहते हो क्योंकि वो सब पर शासन करता है, बिकॉज ही रूल्स एवरीवन, सो ईश्वर मीन्स द रूलर, मास्टर है। तो आप इसको प्रभु बोलते हो तो प्रभु का मतलब भी मास्टर होता है। आप इसको विष्णु कहते हो, विष्णु मतलब जो ऑल फॉरविडिंग, जो सब जगह फैला हुआ है। कोई उसको शिव के रूप में मानता है, शिव का मतलब मंगलमय, ऑस्पिशियस। उसका नाम गणेश है क्योंकि वो गणा नाम ईश है, रूलर ऑफ मास। तो आप जो भी नाम बताते जाओ, उसके फेमिनिन नाम भी है, वो दुर्गा है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस, एक्सेसिबल आसानी से नहीं है। दुख गम्यते इति दुर्गा, तो वो काली के रूप में भी है क्योंकि कलयति गणयति, लोगों को सारे संसार को जो कुछ भी पैदा हुआ है वो उसकी कलमा करता है, उसको रेगुलेट करता है। उनके उनको सिर्फ पैदा करने का काम नहीं, उनके नष्ट होने का भी काम वही करता है। वो जो कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है, कितने दिन जिएगा कितने दिन मरेगा, तो वो मैस्कुलिन भी है, वो फेमिनिन भी है, वो न्यूटर भी है। जिस रूप में हम उसको एक्सप्लेन कर सकें उसकी अपनी अपनी क्वालिटी को देख करके, पर जो उसका एक नाम है, जो प्रॉपर नाम है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, उसको हम ओम कहते हैं। ओम जो ईश्वर के ओवरऑल जो होलिस्टिक पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, वो क्या है, कैसा है, ओवरऑल अगर आप ओम को समझते हैं तो आप ईश्वर को समझ जाते हैं। ओम में तीन अक्षर हैं, बहुत बार हमने चर्चा की, एक दो तीन मिनट लगा के फिर आगे बढ़ते हैं। आ उ और मा, आ से ईश्वर की आदिमता, उसकी जो बिगिनिंगनेस, जैसे आ अक्षर अपने अल्फाबेट में सबसे पहला अक्षर होता है, और आ अक्षर हमारी अल्फाबेट्स में, हमारे वर्णमाला में सभी अक्षरों के अंदर समाया हुआ होता है। आप क ख ग घ कोई भी कॉन्सोनेंट बोले वो बिना अ के आप बोल नहीं सकते। आप जब क बोलते हैं तो अ साउंड आना ही आना है, ये एक यूनिवर्सल रूल है, एक नेचर ऑफ अल्फाबेट से। कोई भी साउंड हो, जब तक आप उसमें स्वर या वावल को यूज नहीं करोगे वो सामने आ ही नहीं सकता। अल्दो दूसरे लैंग्वेज में रैंडमली वावल को डाल दिया गया, अब ए बी, बी में ई डाल देते हो ब के साथ, सी में स के साथ ई डाल देते हो, के में क के साथ ए डाल देते हो, रैंडमली विदाउट एनी साइंटिफिक रीजन रैंडमली हम वावल डाल रखें, विदाउट वावल यू कैन नॉट प्रोनाउंस एनी कॉन्सोनेंट वर्ड्स। पर ये जो साउंड का नेचर है उसको हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, और जो कॉन्सोनेंट्स बनाए, व्यंजन वाला बनाई, उसमें वो एक साइंटिफिक वे में सिस्टम के साथ उसमें स्वरों को डाला, और वो स्वर अकार है, क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ, हर एक में अ साउंड लास्ट में आएगा। ये संस्कृत की अपनी खूबसूरती है, वो एक सिस्टम में, एक रिदम के साथ चलता है। तो जितने भी अल्फाबेट्स हमारे पास है वो सबके अंदर अ समाया हुआ है, विदाउट अ इवन यू कैन नॉट प्रोनाउंस दैट अल्फाबेट। वो अ जो अपने कैरेक्टर में वर्णमाला का पहला अक्षर है और अपने नेचर में हर जगह समाया हुआ है अपनी अल्फाबेट्स में, वो अ ईश्वर की उस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है जो सारे संसार में समाया हुआ है, और जो जब कुछ भी नहीं था बिगिनिंग में वही था। इसी तरह वो जो वर्णमाला में अल्फाबेट्स में वाउल के अल्फाबेट्स में बीच में आता है अ ई उ री ले, दोनों के बैलेंस बनाता है। इसी तरह वो ईश्वर जो सृष्टि और प्रलय संसार का पैदा होना और संसार का नष्ट होने के बीच में जो स्थिति है उसको भी टेक केयर करता है, केयर टेकर जो है। और म जो जैसे मकार संस्कृत के वर्णमाला का जितने भी कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन वर्ण है, उनका अंतिम वर्ण है, उसका आखिर वर्ण मकार है। मकार के बाद जो य र ल व होते हैं या शशह होते हैं वो मिश्रित वर्ण होते हैं, मिक्सचर होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग में भी आपके जेंडर होते हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर होते हैं। वर्णमालाओं की भी अपनी सोसाइटी है, अपनी जेंडर प्रॉब्लम है, वहां भी बड़े सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं वर्णमाला में जी। जो सॉफ्ट लेटर हैं वो हमेशा सप्रेस्ड हो जाते हैं हार्ड लेटर के द्वारा, इसे पार्ट नेचर ऑफ नेचर है। तो ये अल्फाबेट्स की भी खेल है, इसकी भी अपनी सोशियोलॉजी है, इसको समझने की बात है, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो जो यरल वगैरह है वो हमारे जैसे इंसानों में भी ट्रांसजेंडर होते हैं, वो थोड़े बहुत तो कोई पुरुष जैसा शरीर है तो उसका अंदर स्त्री जैसा है, कोई स्त्री जैसी शरीर है, मन पुरुष जैसा है, मिक्सचर है, वो पूरी तरह मेल नहीं पूरी तरह फीमेल नहीं है। इसी तरह वर्णमालाओं में भी कुछ वर्ण होते हैं जो काउंट तो होते हैं कंसोनेंट में, पर एक्चुअली उनके जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो वावल है, उनका नेचर वावल जैसा होता है पर उनका जो फॉर्म है वो कंसोनेंट जैसा होता है। उसको संस्कृत में या हिंदी में हम अंतस्थ बोलते हैं। अंतस्थ का मतलब भी होता है इंटरमीडिएट, जो बीच में आता है, इसीलिए वो प्योर व्यंजन नहीं होते हैं। प्योर व्यंजन 25 होते हैं और उसका आखिर वर्ण होता है मकार। मकार जैसे वर्णमालाओं का अंत है, वो मकार जो अंत है द एंड ऑफ द अल्फाबेट्स है, इस वो परमात्मा की उस स्टेट को भी डिस्क्राइब करता है जो संसार का अंत का भी कारण है। जब कुछ नहीं होता है तब होता है। जब आप ओंकार बोलते हैं, ओम उच्चारण करते हैं, आओ मां का मिला हुआ शब्द बोलते हैं, उसकी जो लास्ट पार्ट है वो साइलेंस हो जाता है, वो आपके अंदर ही रह जाता है बहुत बड़ा भाग, वो आप उसको प्रोनाउंस नहीं करते हो, वो वैखरी के रूप में नहीं आता है, वो अंदर पश्यंती के रूप में रह जाता है, वाणी के अंदर रह जाता है। वो पार्ट ऑफ द साउंड है, वो पार्ट ऑफ द सिलेबल है, पर वो इनविजिबल होता है, वो सुनाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता, पर उसकी एग्जिस्टेंस बना रहता है। इसी तरह ये संसार का भी जो तीन रूप है जिसको आप देखते हैं, जो एक्टिव है, जो फंक्शन करता है, उसका दूसरा फॉर्म है, स्टेज है, जहां वो इनएक्टिव मोड में होता है, जिसको हम प्रलय अवस्था कहते हैं। जब ये संसार नहीं होता है पर वो अपने पार्टिकल के स्टेट में होता है, नहीं होने का सिंपल मीनिंग है, वो अपने मैनिफेस्टेड फॉर्म में नहीं होता पर अपने शटल फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में होता है, जिसको हम विनाश कहते हैं। देयर इज नथिंग लाइक विनाश, डिस्ट्रक्शन। जब कोई वस्तु अपने अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में हो जाए तो वो विनाश होता है, वो कहते हैं। जब मैनिफेस्टेड फॉर्म में हो, फॉर्म में आ रहा हो, उसको हम क्रिएशन कहते हैं। तो ये जो यूनिवर्स को हम देखते हैं, जो बनता है, बिगड़ता है, फंक्शन करता है, ये यूनिवर्स से बियॉन्ड भी एक स्थिति है जहां ईश्वर ये सारे संसार का मालिक है, जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, जो सस्टेन कर रहा है। पर वो संसार के बाहर भी वो है जो इनविजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, किसी भी तरह के उसको यूज में नहीं ला सकते। वो जो ओंकार का साइलेंट पार्ट है, जो चौथी स्थिति है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई नेम नहीं है, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। इसी तरह ईश्वर की वो जो अवस्था जो सृष्टि स्थिति प्रलय से ऊपर है, ट्रांसेंडेंट स्टेट है, वो जो चौथी अवस्था है ओम के द्वारा व्यक्त होता है। वैसे तो हमारे अलग अलग शास्त्रों में ओम की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। अभी थर्सडे को भी हमारी वो एक क्लास चलती थी मांडुक्य उपनिषद, वो पूरा ओमकार की व्याख्या पर थी। पर अभी आपको संक्षेप में सिर्फ बताया, ओम ईश्वर के नाम है, और ऐसा नाम जो मीनिंगफुल है, जो ईश्वर के पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। दूसरी बात, जब आप किसी के नाम लेकर बुलाते हैं, नाम और वो जो इंडिविजुअल है ये दो अलग अलग चीजें नहीं होते हैं। सज्जनों देवियों ध्यान रखिए, किसी का नाम रमेश है, जब आप बोलते हो रमेश तो रमेश नाम का आदमी ही रिएक्ट करता है, बाकी लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि रमेश सिर्फ र आर ए एम ई एस एच नहीं है। ये आर ए एम ई एस एच जो है वो किसी इंडिविजुअल के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी आप रमेश के बारे में बात करते हैं, रमेश नाम लेकर बात करते हैं, तो उस रमेश नाम जिस इंडिविजुअल का है उसके अंदर रिएक्शन आते हैं, वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जो वर्ड है वो उस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप रमेश कहने पर रमेश ही एड्रेस्ड होता है, रमेश वर्ड एड्रेस्ड नहीं होता है। इसी तरह जब भी आप ओम बोलते हो आप ईश्वर ही बोलते हो। जब बोलते हो कि मैं ओम का जप करता हूं आप ईश्वर का जप करते हैं। जब कहते हैं कि आप ओम तो आप ईश्वर को बोल रहे हो। जैसे जब आप बोलते हो रमेश तो रमेश नाम के आदमी ही को ही जब बोलते हो, तो ओम ही ईश्वर है, क्योंकि कोई व्यक्ति और उसका नाम दो अलग अलग चीजें नहीं होते हैं। जब तक दोनों एक नहीं होते हैं तो वो नाम ही नहीं बन सकता, और जब नाम कोई वर्ड बन गया तो फिर वो कोई वर्ड नहीं होता, वो उस सब्जेक्ट को ही डील करता है। इसीलिए हमारे यहां आप कोई भी काम करें, आप खाना खाएं, सोएं, मंत्र बोलें, पढ़ाई करें, कुछ भी करें, हर एक काम से पहले बाद में जहां मन करे ओम बोलने की विधि बनाई गई। इसी बहाने आप ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करें। पर अगर समझ के करते ओम का क्या अर्थ है, ईश्वर के क्या किस क्वालिटी को, क्या एट्रीब्यूट्स को, किस नेचर को वो डिफाइन करता है, अगर समझ के साथ आपके मुंह से ओम निकलता है तो वो ज्यादा आपके दिल को छूता है। नेचुरली जो व्यक्ति बिना समझे काम को करता है वो सिर्फ बोझ को, भार को ढोता है। जैसे गाड़ी बोझ ढोता है पर गाड़ी को कोई फायदा नहीं होता है। जैसे जानवर है, जैसे आपके घोड़े हैं, गधे हैं, और भी जो भी हाथी हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो सामान को ढोते हैं। संस्कृत में श्लोक आता है कि चंदन को ढोने वाला पशु सिर्फ कष्ट ही उठाता है, वो चंदन की लकड़ियों को ढोने का जो दर्द है वो सिर्फ दर्द को ही सहता है, पर चंदन लकड़ी का जो फायदा है वो तो कोई दूसरा उठाता है, वो तो सिर्फ भार ही ढोता है। जो सिर्फ रटते हैं, जपते हैं, बोलते रहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, विदाउट फीलिंग इट, विदाउट रियलाइजिंग इट, वो उस गाड़ी की तरह है, उस व्हीकल की तरह है, उस पशु की तरह है, जो समझते तो है, जो उसका फायदा तो नहीं ले पाते हैं, सिर्फ उसका जो कष्ट वाला पार्ट है, जो पेन वाला पार्ट है उसी को ही यूज लेते हैं, पर उसका जो फायदा वाला पार्ट है वो उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। फायदा क्या है? उसको समझना, उसको रियलाइज करना, दिल में उतारना, वो उसकी फायदा है। चंदन लेप करके लगाते हैं तो आजकल तो घर घर में एसी हो गई, पंखा चलते हैं, कूलर चलते हैं, एसी चलते हैं। पहले जमाने में गर्मी के से बचने के लिए लोग चंदन लेप करके पूरे शरीर में लेपते थे, ठंडक मिलता था, चंदन की खुशबू से घर का माहौल खुशनामा होता था। फायदा तो वो इंसान उठा रहा है, पशु ने कुछ नहीं उठाया, वो तो सिर्फ भार ढोया। इसीलिए इसी तरह आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, बोलते हैं, जपते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर समझ नहीं है तो वो बेकार है, वो भार ढोना जैसा हो जाता है। उसका फायदा तो कोई दूसरा उठाएगा, वो उठाएगा जो उसको समझता है, जो उसको रियलाइज करता है, जो अंदर लेता है, वो उसका फायदा उठाता है। तो ओमकार ईश्वर का नाम है, उसके क्या अर्थ है वो आप आगे और चर्चा करिए, थोड़ी सी हमने आपके सामने रखी। इसीलिए ओमकार को प्रणव कहते हैं। प्रणव का अर्थ होता है प्रकर्षण नूयते इति, जिस शब्द के द्वारा आप अच्छी तरह उस ईश्वर की स्तुति कर सकते हो, ईश्वर को बुला सकते हो, क्योंकि यही एक वर्ड है जो ईश्वर को होलिस्टिक वे में डिफाइन करता है, उसकी होल पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। और कोई भी वर्ड ईश्वर के लिए आप यूज करें, इवन ईश्वर इट्सेल्फ, ये जो ईश्वर वर्ड है ये भी ईश्वर का एक क्वालिटी को बताता है कि ईश्वर का मतलब स्टेट, ईश्वर जो रूल करता है, जो शासन करता है। कोई भी शब्द आप बोलेंगे वो उसका एक सिंगल क्वालिटी को, एट्रीब्यूट को ही डिफाइन करेगा, ओवरऑल नहीं है। पर ओम ईश्वर की होलिस्टिक पर्सनालिटी को आपके अंदर रियलाइज करने में हेल्प कराता है। अगला शब्द होता है भूर्भुवस्व, इसको व्याघ्रति कहते हैं। पिछली बार हमने चर्चा की थी इसका क्या महत्व है। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है, कथा मतलब स्टोरी आती है कि ईश्वर ने संसार को बनाया, तीनों लोगों को बनाया, भूर्भुवस्व। इन संसार को हमारे पुराने शास्त्रों में तीन भाग में बांटा गया है। वो भाग जिसमें हम रहते हैं, वो जो प्लानेट है, धरती है, उसको हम भू बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। जब आप कहीं रहते हैं, रिलेटिवली बाकी चीजें जैसा आपको दिखता है, जैसा प्रिटेंड होता है कि आकाश ऊपर है और बीच में वो जो मिडिल स्पेस है, एटमॉस्फेरिक रीजन है, अंतरिक्ष है। ऑल्दो फैक्चुअली कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं है, हम सब आकाश में लटकते हैं, सब आकाश में ही हुए हैं। पर जैसा हम फील करते हैं, उस फीलिंग के आधार पर हम डिस्क्राइब करते हैं, ये भूलोक है, ये अंतरिक्ष लोक है, जो एटमॉस्फेरिक रीजन है, और वो स्व जो संसार आकाश है। ये तीनों लोक हैं। तो ईश्वर ने जब तीनों लोगों को बनाया, उसने सोचा कि मैं इसका एक निचोड़ निकालूं, इसका मैं जूस, एक असेंस निकालूं जो लोगों को समझ में आ सके। तो स्टोरी है, नरेशन है कि ईश्वर ने जब उसको निचोड़ा तो तीन वेद बने, ऋग यजु साम। तो उसने सोचा ये बड़ा भारी है, इसको भी मैं और ज्यादा सार इसका निकालूं, और जूस निकालूं, इसका और असेंस निकालूं, इसको स्क्वीज करूं। तो उसने तीन वाक्य, तीन सेंटेंस निकाले। उसको कहते तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तीन सेंटेंस तीनों वेदों के सार बने। ईश्वर को लगा कि नहीं, मैं इसका भी और निचोड़ निकालूं। तो कहते हैं उन्होंने तीन वर्ड निकला, उसमें से तीन शब्द निकले, भूर्भुवः स्वः। ईश्वर ने सोचा मैं इसका भी और संक्षिप्त करूं, इसको और मैं जिस्ट वाइज लाऊं। तो तीन लेटर, तीन सिलेबल निकले, आऊ मां, जिसको आप ओम कहते हैं। तो नरेशन है, ऐसा नहीं कि ईश्वर बैठ के फलों को निचोड़ रहा था। समझाने के लिए है कि अगर आप ओम को समझते हैं ठीक से, तीन अक्षरों को अच्छी तरह समझ जाते हैं, तो आप इस ब्रह्मांड को भी समझ सकते हैं। जो लोग मांडुक्य उपनिषद के क्लास में आते थे उनको पता है कि एक एक अक्षर कैसे, और ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली कोई जबरदस्ती मैच कराने की कोशिश करता है। अ का जो नेचर है, वो नेचर कैसे यूनिवर्स को डिफाइन करता है, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करता है। इसी तरह जब ओम को आप समझते हैं, आप ये स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स को समझ पाते हैं। भूर्भुवस्व वर्ड के रूप में है, तीन वर्ड है जो उससे थोड़ा बड़े शब्दों में है, शब्द के रूप में उससे ज्यादा जगह घेरता है, तीन सेंटेंस है। उससे ज्यादा जगह घेरता है, तीन वेद हैं। उससे ज्यादा समझना, अगर ये नहीं आता है तो पूरे यूनिवर्स को अपने आप समझने की कोशिश करिए। कहने का भाव है कि ये जो व्याहृति है, भूर्भुवस्व ओंकार है, ये अपने आप में ज्ञानों का कितना निचोड़ लेकर रखते हैं यूनिवर्स का। भू का अर्थ होता है सत्ता, एग्जिस्टेंस। वो परमात्मा वो सत है, वो एग्जिस्टेंस है। वो तो हम भी हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया का हर वस्तु एग्जिस्ट करता है। पर हमारी जो सत्ता है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। और अगर आप टाइम को देखें रिलेटिवली अपने आयु को, अपनी एज को, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको अगर पूरे यूनिवर्स के टाइम के साथ देखें, तो पता चलेगा कि इस इतने बड़े यूनिवर्स में जो अनंत काल, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिट टाइम है, इन्फिनिट स्पेस है, उसमें हमारी जो जो सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस है, टाइम वाइज या प्लेस वाइज, वो अगर आप बहुत बड़े रेगिस्तान में, डेजर्ट में रेतों को, एक रेत को उठाए और उस एक रेत को भी आप हजार हजार टुकड़े करें, उस टुकड़े करने के बाद रेत का जो पीस बचेगा उसकी जो वैल्यू पॉइंट है इस यूनिवर्स में, उससे भी कम वैल्यू है, उससे भी कम वैल्यू है, प्लेस विथ वैल्यू है इस अर्थ का, हमारी छोड़िए। हम ज्यादा से ज्यादा 100 साल जीते हैं। जब संसार में समय को देखेंगे, जब टाइम को आप एनालिसिस करते हैं, वो इन्फिनिट टाइम को जब आप समझते हैं, आपका 100 साल, 150 साल रेगिस्तान की रेत के हजारों टुकड़ों से भी छोटा सा बिंदु पड़ेगा। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो नेक्स्ट टू नथिंग है। नथिंग नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, पर नथिंग के ठीक बाद वाला है, क्योंकि संसार में जो कुछ बना है वो एक बनने से पहले नहीं था, बनने के बाद भी नहीं होगा, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। आप 100 साल के लिए हैं, ये धरती कितने करोड़ साल के लिए होगा, कुछ बिलियन ईयर्स के लिए होगा, ये सन कुछ ट्रिलियन ईयर्स के लिए होगा, गैलेक्सी कुछ और ज्यादा समय रहेंगे। तो संसार में जो भी चीजें आया है उनको जाना है लिमिटेड टाइम के लिए, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा होते हैं, जो कभी नहीं नष्ट होते हैं, ना वो कभी होते नहीं है, होना उसको कहते हैं टू बिकम। जब आप होने से पहले नहीं थे, जब आपका एग्जिस्टेंस नहीं था, तब आप आते हैं, तब आप कहते हैं कोई चीज पैदा हुआ, कोई चीज बना। ये घर बना है क्योंकि घर बनने से पहले नहीं था, और ये डेफिनेटली सियर है कि ये घर बना है तो जरूर एक दिन ये नहीं रहेगा। इट्स पार्ट ऑफ नेचर है, कोई भी चीज बनता है उसको नष्ट होना ही होता है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनबना है, अनबना मतलब अनमेड है, बने नहीं है, और जो नहीं बनता उसको हम इटर्नल कहते हैं, वो हमेशा होता है। संसार में तीन चीजें हैं जो हमेशा होते हैं, कभी नहीं नष्ट होते हैं, एक परमात्मा है, एक तुम्हारी और मेरी आत्मा है, कभी ना मरती है ना कभी पैदा होती है, एक ये यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स की जो सटल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हमारे यहां हम प्रकृति कहते हैं, सत्व रजा गुण के रूप में, उस रूप में परमात्मा हमेशा नित्य, संसार हमेशा रहता है। पर फर्क है, ये तीनों तो एग्जिस्ट करते हैं, पर फर्क क्या है, ये जो संसार है, जो यूनिवर्स है, वो चेंजेबल है, बदलता रहता है। बदलने का मतलब मरता है पैदा होता है, मरता है पैदा होता है। जब भी आप चेंज वर्ड यूज करते हैं, द वर्ड चेंज, इट मीन्स कोई स्टेट या कुछ चीज मरता है उसके जगह नई चीज लेता है। जब आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, आप बचपन में थे, आपकी चाइल्डहुड थी, आप जवान बने, क्या मतलब हुआ वो चेंज का, क्या मतलब हुआ, आपकी चाइल्डहुड जो है वो नष्ट हुआ तो उसी के जगह जवानी आती है। जवानी के बाद आप बुढ़ा हो जाते हैं, उसका क्या मतलब है कि जो जवानी है वो नष्ट होता है तो उसके जगह, कोई भी चीज नष्ट हुए बिना उसकी जगह दूसरे जगह नहीं ले सकता, उसको आप चेंज कहते हैं। जिसको आप, ये घर जिस दिन पहली बार बना उसकी जो स्ट्रेंथ था, 15 साल के बाद वो स्ट्रेंथ नहीं है, 50 साल के बाद वो नहीं रहेगा। ये जो चेंजेस क्या है, ये अचानक 50 साल के बाद ये घर नहीं टूटेगा, 100 साल के बाद ये घर नहीं टूटेगा। एवरी मोमेंट इस घर में चेंजेस आ रहा है, चेंजेस मतलब कुछ मर रहा है उसकी जगह कुछ ले रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है उसकी चीज, नई चीजें आ रही हैं। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन का अर्थ होता है कुछ मर रहा है कुछ बन रहा है। तो बनना और नष्ट होना ये पार्ट ऑफ नेचर है, ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। तो संसार जब बनने के रूप में हो तो वो अपने ग्रॉस फॉर्म में होता है, पर जब वो नष्ट, जिसको हम कहते हैं नष्ट होना, वो अपने शटल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि संसार नष्ट हो गया, पर उसकी एग्जिस्टेंस में कभी कोई खरोंच नहीं आता है। वो पानी पानी के रूप में रहे, बर्फ के रूप में रहे, वो क्लाउड के बादल के रूप में रहे, उस स्टीम के रूप में रहे, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में रहे, या वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे, उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। वो उसका नेचर है, इटर्नलिटी उसकी नेचर है, सिर्फ उसका फॉर्म बदलता रहता है। तो वो यूनिवर्स का नेचर है, वो इटर्नल है पर चेंजेबल है, उसका फॉर्म बदलता रहता है। आपका बॉडी भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, जिस चीज से संसार बना है आपका शरीर भी उसी से बना है, आपका मन भी उसी से बना है। वही फाइव एलिमेंट्स हैं, वही पांच तत्व हैं, तीन गुण से बना है, इसीलिए ये चेंज होते रहते हैं, ये नष्ट भी होता है। दूसरी चीज जो परमानेंट है, इटर्नल है, जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा बना रहता है, वो आपकी आत्मा है। पर वो एक दूसरे टाइप की सिचुएशन है उसकी। यूनिवर्स तो, संसार तो नित्य है पर बदलता रहता है, तो पता नहीं लगता उसकी नित्य है कि नहीं है। जो साइंटिस्ट हैं, जो खूब रिसर्च करते हैं, आजकल वो बताते हैं कि हर मैटर अपने एनर्जी के फॉर्म में परमानेंट है, इटर्नल है, अपने मैटर के फॉर्म में वो चेंजेबल है। साइंस आज प्रूफ करता है तो आपको यकीन होने लगता, अगर नहीं होता तो आपको लगता है ये दुनिया नष्ट हो जाती है। तो दुनिया में और एक चीज है, वो है आप और आपका, हमारा जो असेंस है, जो एब्सोल्यूट नेचर है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो भी नित्य है, वो भी कभी ना मरता है ना पैदा होता है। पर उसकी भी एक समस्या है, वो यूनिवर्स के अंदर रहता है, वो यूनिवर्स के साथ रहता है, यूनिवर्स का एक पार्ट बन के रहता है, और उसी के एक पार्ट को शरीर के रूप में यूज करता है। वो शरीर के साथ जब वो रहता है तो वो उसके साथ तादात्म्य बना देता है। तादात्म्य का मतलब होता है आईनेस, मेरा मैंपन साबित एस्टेब्लिश कर देता है। वो फिर उस शरीर को मैं समझने लगता है। अल्दो जब कोई व्यक्ति मरता है, हम ये मानते हैं और ये समझते हैं कि ये जो डेड बॉडी पड़ा हुआ है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे पापा का नहीं है, मेरे ग्रांड पा का नहीं है, या ग्रांड माँ का नहीं है, या मम्मा का नहीं है, ये मां नहीं है। ये हम समझते हैं कि ये मेरे पापा के, मामा के, ग्रांड पा के, जो भी जिस भी रिलेटिव चला गया है, वो उसकी बॉडी है, ये बॉडी वो नहीं है। अगर आपको पक्का यकीन होता है कि वही आपके पापा हैं, मामा हैं, ग्रांड पा हैं, ग्रांड माँ है, जो भी चले गए हैं, फिर आप उनको जलाते नहीं है, फिर आप उनको वो गड्ढा खोद के नीचे नहीं रखते, क्योंकि आपको यकीन है ये वो नहीं है जिसको आप जिंदगी भर बोलते आ रहे थे, जिसको आप कह रहे थे ये मेरा पापा है, मामा है, चाचा है, दादा है, नाना, जो भी आप बोलते थे, वो तो आप नहीं है। कल तक आप कह रहे थे ये मेरे पापा हैं, आज आप बोलते ये मेरे पापा की बॉडी है। कल तक कह रहे थे ये मेरे चाचा हैं, आज बोलते ये चाचा की बॉडी है। फिर आप उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वायरस फैलने लगेगा, बैक्टीरिया फैलने लगेगा, बॉडी सड़ने लगेगी, बदबू आने लगेगा, जल्दी से जल्दी उसको निपटारा करना होता है। आदमी कितना एथिस्ट हो, कितना माने या ना माने, फ्यूनरल होम में तो जरूर मानता है कि जो जिसको मैं पापा मम्मी जो भी बोलता था, वो ये बॉडी तो नहीं था, नहीं तो फिर वो जलाता नहीं, नहीं तो फिर उसको ग्रेवयार्ड में डालता नहीं। तो जो मेरी अपनी असेंस से वो ये शरीर नहीं है, पर समस्या है कि मैं शरीर के साथ अटैच्ड हो जाता हूं, इसी को मैं समझने लगता हूं। तो मेरी सत्ता इटर्नल है, पर जब मैं शरीर के साथ जुड़ा होता हूं, मैं फिर वो शरीर का मरना पैदा होने के साथ साइकिल में चलता रहता हूं। एक तीसरी चीज है जो जिसका एग्जिस्टेंस है पर वो भी कभी नहीं मिटता है, वो परमात्मा है। वो संसार की तरह बदलता नहीं है, परिणामी नहीं है, चेंजेबल नहीं है। वो आत्मा की तरह जन्म और मृत्यु को फेस नहीं करता, एक्सपीरियंस नहीं करता, मरना और पैदा होना, शरीर नया शरीर आता है, शरीर के साथ अटैच हो जाता है, फिर सुखी होता है, दुखी होता है, फिर मरने की नौबत आती है। वो किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, वो कहां पर है, वो सब जगह है। मेरी जो असीम से आत्मा है वो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर नहीं है। पर वो जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो हमेशा है, वो भी उतना ही उसकी इटर्नलिटी है। पर वो ना किसी एक जगह पर है, रुकता है ना, वो संसार की तरह बदलता है ना आत्मा की तरह सुख दुख को भोगता है। वो उन सब से ऊपर है, वो नित्य है, अनंत है। उसी परमात्मा को हम भू कहते हैं, सत कहते हैं। क्यों आप कहेंगे कि मैं उस परमात्मा को ही सत कहते हैं, बाकी चीज क्यों नहीं सत हो सकता? वो जो प्योर इटर्नलिटी है, जो इन्फिनिटी है, वो क्यों ईश्वर में ही है और बाकी चीजों में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई इन्फरेंस है, ये हमारा आपका रियलाइजेशन भी साबित करता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर भी प्राण है, जो मैटर है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं मरना चाहता है, कोई भी नहीं। 100 साल की लाइफ है, अगर 120 साल भी जिए तो भी हम जीना चाहते हैं। कितना भी दर्द हो, कितने भी बीमारी हो, कितने भी हम बेचारे हो जाएं, हेल्पलेस हो जाएं, अल्दो हम मुंह से बोलते हैं मर क्यों नहीं जाता हूं, जल्दी भगवान मुझे उठा लें, वगैरह वगैरह। पर सचमुच जब मरने का खबर मिलता है तो हमारा दिल दहल जाता है। क्यों? कोई भी नहीं मरना चाहता है। ऐसा नहीं कि आप मरना नहीं चाहते हैं, कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जिसमें भी जीवन है कोई नहीं मरना चाहता है। क्यों नहीं? मरना ना चाहने का मतलब क्या है? ना मरने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हिंदी में अमृत बोलते हैं, और मरने को मृत्यु बोलते हैं। आप तो पूरी जिंदगी हम यही प्रार्थना करते हैं, क्या मृत्यु और मां, हे भगवान मुझे मौत से बचा लो। मरना नहीं चाहते, और इसीलिए हमने एक मीथ बनाया, ये अमृत क्या है? वो नेक्टर होता है, मीठा होता है। फिर हमने सपना दिखा, मीथ बनाया कि भाई देवता लोग, अगर हम, हमारे धार्मिक लोगों ने हमें ये बताने की कोशिश की कि अगर तुम पूजा पाठ धर्म फर्म करो, ये करो वो करो, तो तुम्हें अमृत मिलेगा। वो ये दावा तो नहीं कर सकते हैं कि तुम अमर हो जाओगे, तुम इमोर्टल हो जाओगे, क्योंकि दावा करने वाला खुद ही मर जाता है। उसकी कोई गारंटी, वो उसकी खुद की गारंटी नहीं ले सकता, तो आपका क्या लेगा? पर ये जरूर बताता है कि अगर ये सब करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, वहां तुम अमृत पियोगे। वो अमृत बड़ा मीठा होता है, वो आपको अमर बना देगा। अमृत कोई पीने लायक चीज नहीं है, वो रियलाइज करने वाली चीज होती है। कोई आदमी मरना नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि उसका जो असेंस है, जो उसका नेचर है, वो बाय नेचर इमोर्टल है। जो चीज हम नहीं जानते, जिस चीज को हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, हम इवन ड्रीम स्टेट में भी, सपने में भी हम उस चीज को चाह नहीं सकते। याद रखिए, आपका जो फिक्शन है, आपकी जो इमेजिनेशन भी है, जो आपकी सपने या जो ड्रीम है जिसमें रियलिटी नहीं होती है, इवन आपकी जो मीथ है जिसको आप फिक्शन कहते हैं, वो फिक्शन भी ऐसा कुछ नहीं है विच इज बियॉन्ड योर सेंसुअल नॉलेज। जो आपके सेंस के द्वारा जिस नॉलेज को, जिस चीज को आप जानते हो, आपका फिक्शन, आपकी ड्रीम, उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, उसका एक मिक्सचर होता है। आप सब्जी बनाते हो, मिक्स सब्जी बनाते हो, गोभी की, आलू की, मटर की बनाते हो। गोभी मटर आलू की सब्जी नाम की चीज धरती में या नेचर में कहीं नहीं है, वो आपका अपना क्रिएशन है। बट दैट क्रिएशन इज नथिंग, समथिंग जो कि था नहीं और आपने क्रिएट किया, एक्सक्लूसिव नहीं है। इट जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ ए कॉम्बिनेशन। आप तीन चार चीजों को कंबाइंड करते हो, उसका एक नया फॉर्म बन जाता है। इट्स नॉट समथिंग यूनिक। इसी तरह संसार में हम कोई भी चीज बनाते हैं, वो उन्हीं चीजों का बन, जो चीजें हमारे सामने हैं हम उनको मिक्स करके एक नई चीज बना देते हैं। फिक्शन और इमेजिनेशन या ड्रीम क्या है? आपने देखा पक्षी उड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, आपको लगा कि काश मैं भी पक्षी जैसा उड़ सकता, पर आप उड़ नहीं सकते। तो क्या किया, आपके सपने में आप देख रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं, आप उड़ रहे हैं, इट्स नॉट ए यूनिक थिंग। आप संसार में जिन चीजों को देखा, पक्षी उड़ सकता है, पक्षी का पंख आपके शरीर में लग गया, रियल लाइफ में लगा नहीं सकते, इमेजिन कर लेते हैं तो आप उड़ने लगते हैं। फिक्शन इज नथिंग, इट्स जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ आवर ओन सेंसुअल नॉलेज, जिस नॉलेज को हमने इंद्रियों के द्वारा, उसका एक कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं। तो सज्जनों देवियों, हर जीव का, हर प्राणी का ये बाय नेचर इच्छा है, डिजायर है कि वो ना मरे। अगर अमृत इमोर्टेलिटी को वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता, रियलाइज नहीं किया होता, वो आपके इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकता, पर तो रियल लाइफ में भी हम फील करते हैं, कोई भी नहीं मरना चाहता है। इसका मतलब है इट वॉज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड बाय अस, इट वॉज ऑलरेडी रियलाइज बाय अस। जो हमारी इमोर्टेलिटी है, जो हमारी अमृतता है, जो नित्यता है, ये हमारे सबकॉन्शियस में है, हमारा अनुभव का विषय है। वो पक्षी हो, पशु हो, कीड़ा हो, इंसान हो, और वो उसको अननोइंगली मोटिवेट करता है ना मरने के लिए। और जब आप प्रॉपर वे से चलते हैं तो आप एक दिन उस इमोर्टेलिटी को प्राप्त करते हैं। उसका सिंपल, इमोर्टेलिटी का मतलब है जब आप मरेंगे नहीं, मरते आप नहीं है, आपका शरीर मरता है, मरते आप नहीं है, आपका मन मरता है, आपकी बुद्धि मरती है। जब शरीर मन बुद्धि होंगे ही नहीं तो कोई नहीं मरेगा, आप तब हमेशा बने रहेंगे, ना शरीर छूटेगा ना मन छूटेगा। तो ये साबित करता है, ये प्रूफ करता है कि जो परमानेंट एग्जिस्टेंस है, जिसको आप इटर्नल कहते हैं, जिसको आप इंफिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, एंड नहीं है, वो है। और आपका भी मेरा भी रियलाइजेशन का विषय हो चुका है, तभी हमारे आपके अंदर सबकॉन्शियसली हमें ये मोटिवेट करता है, हमें वो फोर्स करता है ना मरने के लिए, हमारे अंदर इच्छा पैदा करता है। देवियों सज्जनों, फिर अगले बार हम चर्चा करेंगे जो भूव है, जो चीत है, और स्व है, आनंद है, और आगे कोई ऐसी फेस्टिवल नहीं है, तो हम कंटिन्यूटी के साथ इनकी चर्चा रख सकते हैं। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।